ओम शांति। और आप सभी को शुभ दिवाली अथवा हैप्पी दिवाली। आपका उत्तर कुछ दिनों से लेकर मधुबन बेहद का घर है, तो बेहद की सेलिब्रेशंस चलती ही रही है। पिछले सप्ताह सुबह शाम दादियां हमारी, मुनि बहन जी, सब बड़े भाई बहने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते रहे दिवाली मनाने के लिए। अव्यक्त बाप दादा तथा साकार बाबा ने भी दिवाली के ऊपर बहुत सुंदर बातें समझाई है, और वो सब बातें हम आज के दिन वो स्मरण करते अथवा स्मृति में लाते, ताकि फिर वो बातें हमारे जीवन के द्वारा अन्य आत्माओं को नजर आए और वो भी अपने जीवन में धारण कर सके। इस बार जब दादी जी लंदन में थे, तो उस समय दादी ने कहा कि ज्ञान है समझ, योग है बाबा से शक्ति लेकर के वो समझ अपने जीवन में लाना, और धारणा है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कि कहाँ तक हर बात समझी है और धारण की है, और उसके द्वारा ही ये जब तीन सब्जेक्ट्स अपने जीवन में एक नेचुरल स्वरूप ले लेंगे, तो फिर तो सेवा ऑटोमेटिकली होती ही रहेंगी। फिर सेवा के लिए ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी क्या प्लान बनाए, परंतु बाबा के बच्चों को देख करके अपने आप ही उनको पता चलेगा कि अब हम किसको याद करें, किसने उनको बनाया। तो आज दीपावली के दिन जो ड्रामा प्लान अनुसार अव्यक्त बाप दादा की उस दिन मुरली चली थी, मैं समझती जो यहाँ के निवासी है वो तो थे, परंतु जो अन्य स्थानों से आए हैं, आप सभी ने भी अपने अपने स्थानों पर वो वीडियो देखी होंगी। परंतु यहाँ तो वंडरफुल वातावरण ऐसे था, जो ऐसे नहीं लगता था कि हम कोई पुरानी मुरली सुन रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था कि बाबा सामने है, बाबा मुरली चला रहे हैं। और जब बाबा वीडियो में कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम वाले जो आए हैं वो खड़े हो जाए, तो जो यहाँ बैठे थे वो भी खड़े हो गए। ये नहीं उनको ध्यान रहा कि वीडियो चल रहा, हम कैसे खड़े हो रहे हैं। वातावरण ऐसे था जैसे बाबा हाजिर है और बाबा अभी कह रहे हैं खड़े हो जाओ, तो सब खड़े हो गए और बड़ा अच्छा वातावरण था। परंतु जब वो मुरली हम सुन रहे थे, मुझे लग रहा था कि बाबा दिवाली की मुरली चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के टाइम पर ही पुराने खाते को समाप्त कर नए खाते को आरंभ करते हैं, तो नए खाते में भी बाबा, आप सोचो कितनी गहराई से, कितनी डिटेल्स से हमें अच्छी अच्छी बातें ध्यान पर देते हैं। तो बाबा ने तीन खाते बताए, मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा ही, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से बाबा ने वो स्पष्ट करके बताया। तो उसमें मैं उसका थोड़ा वर्णन करती हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं, परंतु आप लोगों ने खुद भी उसका मनन चिंतन करके उसका जीवन में कैसे लगता है वो देखा होगा। तो एक तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ का श्रेष्ठ प्रारब्ध। तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो टोटली हम कहेंगे अपना जीवन ही है पुरुषार्थ ही जीवन, परंतु जिस तरह से बाबा ने स्पष्ट किया एक एक बात, मुझे लगा कि जो अपना इंटरनल ध्यान रहता, किन बातों में ध्यान रहता, जैसे तीन बिंदियां, बाबा तीन बिंदियों की भी बात याद दिलाई उस समय, तो तीन बिंदियों को कहाँ तक हमने इंटरनल उस बात को याद किया और उसका अभ्यास करते हैं, इसको बाबा कहते थे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। क्योंकि एक्सटर्नल बातें जो हम सेवा करते उसका अलग हिस्सा बाबा ने बताया, या जो हम संबंध संपर्क में आते हैं वो भी अलग बात, परंतु जो अपने जीवन का मूल आधार है वो है अपने संकल्प, अपने श्वास, अपनी स्मृति, और स्मृति के आधार पर अपनी वृत्ति और दृष्टि, फिर कृति, और उस अनुसार संस्कृति, और उस अनुसार सृष्टि बनती। तो इंटरनली हमें कहाँ तक हमने इस बात का अभ्यास किया है कि मैं हूँ बिंदी। कितनी सिंपल बात है, परंतु कितना ध्यान देना पड़ता, क्योंकि सिंपल बातें जल्दी खिसक जाती और हमें आदत है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातों का सोचना। और बाबा कह रहे हैं बस कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ दो, अभी हर बात को बहुत सिंपल कर दो। मैं हूँ बिंदी, बाप है बिंदी, और बस हर बात में जो बीता एक घड़ी फिर दोबारा रिपीट नहीं होती, तो उसका भी हमारे पास वो संकल्प रिपीट न हो, बिंदी लगाओ। तो इस प्रकार से जो अपना आंतरिक पुरुषार्थ की बातें हैं, आंतरिक परिवर्तन की बातें हैं, अपना अपने संस्कारों पर इतना ध्यान है, और जबकि लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो पहले तो खूब सफाई करते हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो जबकि हम भी अपने बुद्धि के बर्तन को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ बनाकर रखते हैं, अपने मन में कोई भी पास्ट का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, तो फिर जो सद्गुण है, जिन लक्षणों का हम सचमुच आह्वान करने चाहते हैं, जो सच्चा सच्चा जीवन का धन है, हमारे गुण है, वो हमारे जीवन में सहज ही आते नहीं है, परंतु मैं कहेंगी अंदर ही छुपे हुए थे। जिस तरह से बहुत कोई सुंदर वस्तु होती, एक स्थान पर हम लोग गए थे तो फर्श बहुत मैला था, प्रदर्शनी करने गए थे, तो मैंने तो देख करके कहा कि इसको तो ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, परंतु कुछ भाई हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि क्या बड़ी बात है, हम अच्छी तरह से मेहनत करके इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ करते गए, करते गए, करते गए, और जो बहुत अच्छे नीचे से टाइल्स थे वो फिर चमकने लगे, वो बिल्कुल पहले थे परंतु नजर नहीं आते थे, परंतु सफाई करने से वो बहुत सुंदर नजर आने लगे। इसी तरह से जो अपने अंदर सद्गुण है, क्यों? क्योंकि हम कौन है, हमें देवता घराने वाली आत्माएं। आज के शुभ दिन पर ये हम याद रखें कि हम कौन है, न सिर्फ हम आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु है, परंतु वास्तव में हम है आदि सनातन धर्म की आदि आने वाली देव आत्माएं। तो वो सारे ही सत लक्षण अथवा सत गुण हमारे अंदर छिपे हुए हैं, परंतु ऊपर से जो मैल चढ़ गया है उसको खूब खूब अच्छी तरह से सफाई करनी होती है, और जैसे जैसे हम सफाई करते जाते हैं वो सद्गुण नजर आने लगते हैं, और जैसे हम उन सद्गुणों का जीवन में उपयोग करते हैं वो हमें भी पसंद आता परंतु औरों को भी नजर आता। तो लक्ष्मी का आह्वान करना इतना सहज नहीं है, एक तरफ कहेंगे बहुत सहज है, बस क्या बड़ी बात है, सिर्फ साफ करो, सफाई करो, परंतु सफाई करने में कभी कभी बहुत मेहनत लगती। तो अच्छी तरह से वो मेहनत करके खुद को साफ करें, मन को साफ करें, बुद्धि को साफ करें, तो जो श्रेष्ठ गुण आत्मा के अंदर छिपे हुए हैं वो फिर से इमर्ज हो सकते। तो सचमुच हम श्री लक्ष्मी जी का फिर आह्वान कर सकेंगे, अथवा सत्यु की तैयारी हम कर सकेंगे। तो पहले बाबा ने कहा आंतरिक जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है उसमें कई बार क्या होता कि हम थक करके पुरुषार्थ करते, कोई बात ठीक नहीं होती तो फिर सोचते कि हाँ कुछ तो करना होगा, फिर हम पुरुषार्थ करने लगते। दूसरा है कि उत्साह उमंग से हम पुरुषार्थ करते चले, उसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो और कोई बात को न देखें और कोई व्यक्ति को न देखें। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मंजिल तक टाइम पर पहुंचना है, उसमें दूसरा कोई क्या कर रहा है। जैसे साकार बाबा कहते हैं ना कि कोई ट्रेन स्टेशन पर उतर जाता और रबड़ी पूड़ी खाने में मस्त हो जाते और ट्रेन तब तक छूट जाती, तो यदि हमारा ध्यान किसी और तरफ गया तो फिर ट्रेन हमारी भी छूट जाती। तो हम समय अनुसार अपने पुरुषार्थ को ऐसा तीव्र बनाएं अथवा श्रेष्ठ बनाएं जो अभी ही हमें उसका प्रालब्ध का अनुभव होने लगे। भविष्य तो जो होगा देखेंगे, परंतु जो आंतरिक खुशी है, जो सब चाहते हैं दिवाली में हम खूब खुशियां मनाएं, तो सचमुच हम खुशी मना सकेंगे। आर्टिफिशियल नहीं, थोड़े समय की नहीं, परंतु सदाकाल की। दूसरा भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि दूसरा खाता है दुआओं का, खुद हम संतुष्ट रहें। एक तो है कि हम खुद अपने को संतुष्ट करें, ये तो चलो ठीक है, कैसे भी करके हम एडजस्ट करके अपने को संतुष्ट कर लेते, परंतु न सिर्फ हमें खुद को संतुष्ट करना है। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही कि औरों को भी संतुष्ट करना होगा, जो हमारे आजू बाजू में है, जिनके साथ हमारा कार्य व्यवहार चलता। क्योंकि बाबा सिर्फ हमसे नहीं पूछेगा कि आप संतुष्ट है, या बाबा सिर्फ हमारे चेहरे और हमारे मन को नहीं देखेगा, बाबा अवश्य देखेगा कि औरों का क्या है सर्टिफिकेट। तो औरों को भी हम संतुष्ट कर सके, बाबा का विशेष ये भी कहना। और फिर आपने देखा होगा कार्य कितना भी अच्छा हो, परंतु उसमें यदि हमारा संबंध औरों के साथ ठीक नहीं रहा है, तो संबंध से जो हमें दुआएं मिलती है वो यदि हमने दुआएं जमा नहीं की, तो वास्तव में हम खुद भी इतना संतुष्ट नहीं रह पाते। जब बाहर वालों के साथ हम बातचीत करते हैं तो वो कई बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा कार्य होता तो हम लोग हर बात पर ठीक अटेंशन नहीं दे पाते, तो हम किस तरह से बैलेंस रखें। तो ज्यादा करके मैं उन्हों को ये बात कहती हूँ कि बैलेंस रखने की बात नहीं है, अपनी प्रायोरिटी बनाने की बात है। तो प्रायोरिटी यदि है आंतरिक खुद का पुरुषार्थ, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है संबंध, वो संबंध बड़ा अच्छा बना रहता। और यदि संबंध सबके साथ अच्छा बना रहता तो न सिर्फ उसमें संतुष्टता और दुआएं मिलती, परंतु साथ ही साथ सहयोग मिलता। तो बाबा ने तीसरी बात जो कही कि पुण्य कर्म। तो चलो एक तो है कि छोटा सा कार्य मैं एक अकेली कर सकती हूँ, अपने तन को लगाएं, अपने धन को लगाएं, अपने समय को लगाएं, अपनी कलाएं को लगाएं, परंतु यदि कोई बड़ा कार्य करना होता कोई एक अकेला नहीं कर पाता। और यदि हमने सबके साथ अच्छी तरह से सहयोग का संबंध बना के रखा है, हमने उन्हें सहयोग दिया है, उन्हें संतुष्ट किया है, तो रिटर्न में अभी ही तुरंत क्या होगा, उन्हों का सहयोग हमें मिलेगा। और यदि हमने आंतरिक पुरुषार्थ और सर्व के साथ संबंध रखने का ध्यान नहीं दिया, तो फिर कार्य यानी तो छोटा सा, चलो हम अकेला जो कुछ कर सकेंगे वो होगा, परंतु जो बड़ा बेहद का कार्य है वो रह जाएगा। तो बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खाते की बातें बताई, और ये जब पुण्य कर्म की खाते की बात कही, उसमें खास बाबा का ये शब्द था निस्वार्थ। कई बार हम कुछ तन लगाते, धन लगाते, समय देते, कला देते, और हम सोचते कि कुछ तो किसको कहना चाहिए, उन्होंने क्या देखा नहीं है कि मैंने इतना सब कुछ किया, या ये हम सोचे कि हमने तो जो कुछ किया किसके ध्यान पर ही नहीं आया, बस वो व्यर्थ चला गया। परंतु उसको निस्वार्थ पुण्य कर्म नहीं कहेंगे। यदि हमने अभी ही मन में स्वार्थ भावना रखी कि उसकी पहचान हो, उसका मान मिले आदाद, तो फिर तो चलो वो मिल भी जाए, परंतु हमने किया उसका खाता, अभी ही हमें रिटर्न में फल मिला, समाप्त। फिर तो कुछ सत्यों के लिए जमा ही नहीं हुआ, भविष्य के लिए कुछ हमारा फल नहीं होगा, अभी ही ले लिया। तब बाबा ने कहा कि निस्वार्थ, तो आप सोचो कि हमें कितना पुण्य का खाता जमा करना होगा, जिस आधार पर न सिर्फ आधा कल्प हम सुखी रहे, परंतु 84 जन्मों में से 83 बर्थ्स, तो क्या 82 बर्थ्स शायद कम से कम हम सुखी तो रहेंगे जरूर। बाबा ने ये भी बता दिया है कि लास्ट में सिर्फ थोड़ा बहुत अंत में कुछ दुख देखा होगा, और जन्मों में कोई इतना दुख भी नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान के पास जो हमने श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा किया उसका रिजल्ट हमें इतना समय तक चलता है। तो ये तीन खाते की बात आज सवेरे दिवाली के दिन याद आ रही थी कि बाबा ने किस तरह से हमें उस दिन पहले से ही दिवाली के लिए अपना संदेश दे दिया कि हमें किस प्रकार से चेकिंग करनी होगी। बाकी तो हाँ, जितनी जितनी हम खुशियां अब मनाते हैं, सचमुच सारे कल्प के लिए वो हमारा खुशी का खजाना भी बिल्कुल जमा हो जाता। तो हम देखें कि संगम युग में यदि एक घड़ी भी हमारी दुख की जा रही है, उसका कारण क्या, और अवश्य ही ये संकल्प आता कि बाबा तो हमें सुख का भंडार मिला है, अथवा सुख का सागर, सुखदाता मिला है, तो यदि हम बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा का प्यार, बाबा का सुख जो हमें अनुभव प्राप्त होता रहता है, तो फिर मनुष्य आत्माएं कुछ भी करे परंतु वो बात हमारे बुद्धि में टिक नहीं पाती। भक्ति में कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, और वैसे तो ज्ञान के हिसाब से हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, जो हमने किया उसका लेप छेप आत्मा के ऊपर अवश्य ही पड़ता। परंतु किन किन बातों में बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें निर्लेप बनना बहुत ही आवश्यक होता। जो भी बाहर की बातें हैं, नीचे है, ऊपर है, महिमा है, निंदा है, कुछ भी है, जितना जितना हम अपनी ऊंची ऊपर की स्थिति बनाकर रखते हैं, उतना यहाँ की बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। यदि असर होता तो जैसे आपने देखा होगा, चिड़िया जब छोटी होती उसकी जो माँ होती उसको अपने ओखेरे में बैठने नहीं देती, उसको टुक टुक करके ओखेरे से निकालती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है चिड़िया छोटी निकलेंगी, उड़ने लगेंगी। जब तक ओखेरे में बैठी है तब तक उसको उड़ना आता ही नहीं है, वो भूली हुई है उसके धर्म कर्म को। तो मानो कि कोई भी बातें आती है, नीचे ऊपर हो रहा है, संस्कारों की बातें आती है, वो हमें टुक टुक करके और उड़ने के लिए एक साधन हो जाता है, एक शिक्षा मिल जाती कि हम और ऊंचा उड़े, ताकि फिर उन बातों का सब जो भी ये बातें हैं नीचे रह जाए और हम ऊपर उड़ते रहें। तो आप सोचो कि ड्रामा के हर सीन, ड्रामा के हर पल, न सिर्फ बाबा कहते हैं कल्याणकारी है, कई बार जब हम कहते हैं कि बाबा कहता है कि कल्याणकारी ड्रामा है तो हम कहेंगे बाबा ने कहा, परंतु हम अपने दिल से कहें कि हाँ सचमुच ड्रामा कल्याणकारी है, वो तब जबकि हमने उसका अपनी दृष्टि वृत्ति को ऐसे बनाया होगा जिससे हम हर बात से उड़ते चलें और आगे उड़ते जाएं और ऊंचा उड़ते जाएं। तो उससे क्या होगा कि सचमुच जो अंदर का खुशी का खजाना हम जमा करेंगे अपने पास, तो जो हमारे से सामने आएंगे हम उनको क्या देंगे, सचमुच जो वास्तविक खुशी है हम उनको भी वही अनुभव कराएंगे। ऊपर ऊपर की खुशी तो संसार में आर्टिफिशियल तो एक दो दिन के लिए मना लेते, परंतु फिर भी उसमें भी फिर कहां न कहां टेंशन आ ही जाता। परंतु बाबा के बच्चों के पास भगवान से जब इतना हमें सुख मिला है, तो वो सुख हमारे पास इतना हो जो हमारे नैनों द्वारा वो सुख का अनुभव हो, हमारे मुख द्वारा ऐसे सुख के शब्द निकले, हमारे चेहरे से उनको ऐसे लगे कि हाँ सचमुच इस स्थान पर जाने से हमें वो रास्ता मिलेगा जिससे हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग अपने पास आते हैं, वो क्यों आते हैं? समस्याएं तो उनके पास पहले से ही बहुत सारी है, टेंशन भी बहुत है, तो यदि हमारे पास भी आकर के सिर्फ मेहनत का चेहरा देखे, थका हुआ चेहरा देखे और ये सुने कि हाँ बहुत पुरुषार्थ करने की बातें हैं, वो आप पहले से उनको डरा लो, 4 बजे उठना होगा, नींद का त्याग करना होगा, तो वो तो शायद जल्दी में ही भाग जाए। परंतु यदि उनको कुछ प्राप्ति नजर आए हमारे जीवन के द्वारा, एक झलक देखने से ही उनको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें बहुत कुछ मिल सकता, तो वो फिर उस हिसाब से खुशी खुशी से आएंगे और प्यार से जो बातें बाबा देने चाहता है वो बाबा से लेंगे। आप सोचो हम बाबा के पास क्यों आए? बाबा ने पहले से हमें लिस्ट नहीं बताई कि ये करना होगा। पहले तो बाबा ने दृष्टि से हमें निहाल किया, पहले तो बाबा ने हमें बहुत बहुत खुशी का, बहुत सुख का अनुभव कराया। तो जब वो हमने सुख पाया, बाबा का प्यार पाया, तो फिर हमारा पुरुषार्थ आगे चला। अभी बाबा कहते हैं कि बाबा तो गुप्त है, पहले भी वैसे भी गुप्त थे, परंतु अभी तो अव्यक्त होकर के और ही गुप्त है। तो बाबा के जो बच्चे हैं, बच्चों को देख करके औरों को प्रेरणा मिले कि अब हमें क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। आप सोचो कि 80 वर्ष पहले बाबा ने कहा था कि दूसरी दिवाली नहीं आएंगे, परंतु अनेक और दिवालियां आती रही। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये तो बता दिया कि हाँ हर दिवाली एक नई दिवाली है, सेम दिवाली तो आई नहीं, वही तो दिवाली नहीं आई, हर समय नई दिवाली आती रही। परंतु उसमें इतना समय लगा है कि बाबा अपने बच्चों को तैयार करें ताकि विश्व के सामने वो बच्चे आ सके कि हाँ ये है प्रैक्टिकल प्रूफ भगवान के कार्य का। एक दो ने जीवन नहीं बनाई है, परंतु लाखों के अंदाज में इतनी सभी ने, श्रेष्ठ आत्माएं ने अपनी जीवन बनाकर रखी है। और सचमुच दीपावली आ रही है, आज हम मना रहे हैं, परंतु जानते हैं सच्ची सच्ची दीपावली तो होंगी जब सत्युग आएगा। तो जब लोग हमें देखें, उनको ये मालूम हो कि हाँ देवता घराने वाली आत्माएं तैयार हो गई है, तो मानेंगे कि हाँ सचमुच दिवाली आ रही है, सत्युग आ रहा है। अब तक तो लोग हमें पूछते रहते हैं कि किस आधार से आप कहते हो कि हाँ विश्व में शांति होंगी, किस आधार से आप कहते हो कि हाँ विश्व में सुख आएगा, अभी कुछ नजारा तो नजर नहीं आ रहा। परंतु जब बाबा के बच्चों को देखे, रचना को देख करके उनको मालूम पड़े कि रचयिता कौन है और वो कौन सा कार्य कर रहा है और वो कैसे कार्य कर रहा है, तो अभी हमें वो प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा को भी दिखाना होगा कि बाबा ने जो मेहनत हमारे ऊपर की है उसका प्रूफ क्या है, और सारे विश्व को भी वो सामने दिखाना होगा कि अब वो घड़ी आ गई है जो बस सत्य के आने में कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जल्दी ही सत्य के दिन आ ही जाएंगे। तो छोटी दिवाली तो हम कब से मनाते रहे हैं, कहते हैं कि एक होती है छोटी दिवाली, दूसरी होती है बड़ी दिवाली। तो बड़ी दिवाली तो सचमुच आ रही है, बहुत जल्दी आ ही जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मौका मिला है कि एक एक के साथ तो इंडिविजुअल पर्सनल मुलाकात मुश्किल से होती, परंतु आज सब मधुबन निवासी बाबा के विदेशी बच्चे, बाबा के अब सब तरफ से भारत से आए हुए देश के बच्चों को शुभ दिवाली अथवा हैप्पी दिवाली कहने का मौका बना है। ओम शांति।